ऐसे ही वो परमेश्वर आए थे हजरत मोहम्मद के पास कि ये प्यारी आत्मा है, अगर इसको मैं अपना सच्चाई दिखा दूंगा, अपना सत स्थान दिखा दूंगा तो जगह जगह जाकर इन सभी प्यारी आत्माओं को सत भक्ति बता देगा। अब ऐसा ही किया, कबीर परमेश्वर आए कभी वो पूर्ण ब्रह्म और लेकर हजरत मोहम्मद से वार्ता की, काफी देर समझाया, फिर हजरत मोहम्मद यूं बोले जी मेरे को फरिश्ते आया था जबराइल नाम का और मुझे ऊपर के लोक दिखा कर लाया है। कबीर साहब ने कहा बेटा वो काल के दूत है और तुम मेरी आत्मा हो, आजा मैं दिखाता हूँ तुझे अपना आपका सत स्थान जा तुम रहा करते थे। उस समय तक हजरत मोहम्मद जी के काफी अनुयायी हो गए थे, कई लाखों की संख्या में। तो हजरत मोहम्मद कहने लगा मैं आंखें देखूं दाता जब बात बने परवरदिगार, नहीं तो मेरी समझ में नहीं आवा आपकी कहानी, क्योंकि वो पहले उस जबराइल जैसे देवताओं ने उसमें ऐसा रंग भर दिया यही तक के भगवान का, और ऊपर दिखा दिए बिलाईसा जी ये बैठे, मूसा जी भी वही देख कर आए हुए, ठीक है वो भी काल ने अपने संदेश वाहक बनाकर भेजे थे, रसूल बनाकर भेजे थे और फिर वापस बुला लिया क्योंकि वो पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले जन्म जन्मांतर के ऋषि लोग थे, अब उनकी कमाइयां बची हैं, अब मान ले वो एक मनुष्य जीवन पाकर चले जाएंगे फिर भी वो देव लोक में जा सकते हैं, उनके भी पुण्य काफी बकाया है, और फिर नरक का नंबर आओगे जब सारे नरक में भी ठोके जाएंगे, जैसे कल आपने जैन धर्म का इतिहास सामने देखा था, कितनी प्यारी आत्मा महावीर जैन जी की आत्मा, और ऋषभ देव से उपदेश पाकर उसकी ये दुर्गति हुई, आंखों में पानी आ जा, करोड़ों बार गधा, करोड़ों बार कुत्ता, करोड़ों बार वैश्या, लाखों बार वृक्ष, लाखों बार घोड़े, ये परमात्मा इतना, और फिर देव भी बना, स्वर्ग में भी गए फिर नरक में भी गए, तो दोनों ही मिलते हैं यहाँ पर, जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे स्वर्ग भी नरक भी दोनों भोगने पड़ेंगे, सुख पुण्य भी और पाप भी, ऐसे ही संविधान है। तो हजरत मोहम्मद जी के मन में कुछ तो भय गना हो गया, डर गना हो गया किसका, उन फरिश्तों का, कि फिर आकर मुझे दंग ना कर दे, और वहां ऊपर लेकर गए परमात्मा, वापस छोड़ दिया, लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने वो बात स्वीकार ना करी, कहने लगे नहीं जी अब मैं तो यही ठीक हूं। उसके बाद परमात्मा उनसे मिले नहीं, साहिब ने कहा था कि बेटा तो सतमार्ग दर्शन कर दे, तो उसने ये बात स्वीकार नहीं की क्योंकि डर रहे थे, ज्यादा डरा दिया गया था उनको जबराइल नामक देवता थे, अब इस करके उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो क्या हुआ कि कुछ सिद्धि आ जाती है भक्ति से, जैसे स्वाभाविक कोई तप भी कर ले उसमें कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। एक बार हजरत मोहम्मद जी ने बकरे को मार दिया अपनी सिद्धि थे, नहीं वैसे एक बकरा किसी सेवक का वहां चल रहा था, भेड़ बकरियां चराते थे ज्यादा लोग, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। हजरत मोहम्मद जी ने एक मंत्र बोलकर कान पकड़ उसका हाथ लगाया, वो जीवित हो गया, और देखने वालों की सैकड़ों की संख्या थी, 10-20 की संख्या थी वहां, पाली पुलिस जो चराहा थे, तो उन्होंने सब जगह बताया कि आज हजरत मोहम्मद जी ने एक बकरा जीवित कर दिया। दूसरे कहने लगे भाई यह बात तो जैसी नहीं, बहुत कुछ कहने लगे। तो एक दिन क्या किया, 10-20 इकट्ठे बैठे थे, हजरत मोहम्मद जी ने अपने मंत्र का एक बकरा मार दिया अपनी सिद्धि शब्द की तरह, और जब देख लिया ना कति तो मर गया, वो बकरा वो गरीब आदमी का था जो वहां ग्वाला था चरा था, वो रोने लग गया चरणा में पड़ के, हे महाराज गरीब के पास तो ये दो बकरियां थी एक ही बकरा था, मेरे लिए तो ये बड़ी भारी बात बन जाएगी, परवरदिगार मेरा जीवित कर दो। तो उसी समय जीवित कर दिया, सब जगह प्रशंसा के पात्र हजरत मोहम्मद बन गए। अब फिर कुछ लोग कहने लगे भाई झूठ बोलते हो तुम मुसलमानों, ये तुम तो गपोड़ पेलते हो, अभी कभी हो सके ऐसे मुर्दा जीवित हो जावे। तो जब हजरत मोहम्मद जी को ये बताया कि ये ऐसे कह रहे हैं लोग कि झूठ बोल रहे हैं बकरा जीवित नहीं हुआ, कबीर साहब कह हजरत मोहम्मद कहने लगे कि अब का गाय मारूंगा और उसको जीवित करूंगा, सबको डिंडोरा पिटवा दो मुनादी करवा दो, हजारों की संख्या में दर्शक आ गए, और हजरत मोहम्मद जी ने वो पढ़कर मंत्र और गऊ खड़ी थी मार दी, वो गिर गई बेचारी पड़गी कति निढाल होकर, सब ने देखा कान कून नाक कति मृत होगी, सब कहने लगे कति मृत होगी, और देखियो हजरत मोहम्मद जीवित करेंगे। हजरत उस नबी मोहम्मद जी ने फिर कोशिश करी वो जीवित करने की, वो गाय जीवित ना हुई क्योंकि वह बैटरी जो कमाई करी थी वह डिस्चार्ज होगी, वो जो सत सिद्धियां प्राप्त हुई थी वो खत्म होगी उनकी, वो नहीं रहा, वो कमाई धन की वो सिद्धि की नहीं हुई। अब वहां फिर बेइज्जती होए। अब ये परमात्मा जो कबीर साहब है ना, यही सबका साथी है। अब जैसे एक बालक किसी बाप का, और कितना ही जैसे शराब शुरू पीने लग जाए, नक में बच्चा दौरा बैठा है, और जब वो उसके उस विवश हो जाए, उन तो दुखी हो जाए ना, फिर भी रोए पिता, फिर भी जाया कर अपने बच्चे ने सीने का लगा कर वापस ले आता है, काजा पुत्र, और वो फिर उसको और मदद भी कर देता है। तो ऐसे ये जब अंतरात्मा से पुकार करी हजरत मोहम्मद ने, हे कबीर अल्लाह, हे कबीर अल्लाह, आज मेरी इज्जत रखो मेरे दाता, अल्लाह अकबर। ये जो जब आत्मा से पुकार, ऐसे रो के याद किया था मालिक को, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीरन, अल्लाह अकबर, ये कई प्रकार से अरबी भाषा में लिखा जाता है। अब उसने तो ऐसा याद किया था कुछ कसुक के साथ, उधर से वो परमात्मा अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के एत, और हरना कुछ उधर विदारिया मैं ही रावण मारा खेत। अब विष्णु जी ने, ये लंबी कहानी है, अब परमात्मा कबीर साहब की महिमा बताना यहां आवश्यक है। तो उसी समय वो कबीर परमेश्वर आए, जैसे बेई नदी पर गुरु नानक देव जी को दोबारा मिले, तो वो केवल गुरु नानक देव जी को दृष्टिगोचर हो रहे थे, अन्य जो स्नान करने वालों को नहीं दिख रहे थे, अकेले गुरु नानक देव जी बोलते दिखाई दे थे। ऐसे ही हजरत मोहम्मद जब आए, कबीर साहब आए हजरत मोहम्मद के पास, तो दोनों की वार्ता हुई, और उसने चरण टेके नो। अब ये नमाज जो करते है ना, ये ऐसे प्रारंभ हुई थी विशेषकर, और ये अल्लाहु अकबर ये न्यो प्रारंभ हुई थी। जब उसने मत्था टेक के अपने भगवान कबीर साहब के, मेरी इज्जत रखो दाता, और नु खड़े थे भगवान मनुष्य रूप में है, कभी चरणों में मत्था टेक कर फिर ऐसे देखे, ऐसे देखे, दया करो दाता, मन ही मन में नु कर रक्षा करो मेरी। तब कबीर साहब बोले खड़ा हो, और अपनी सब शक्ति से और उसको जीवित कर दिया। कबीर साहब ने वो गाय जीवित कर दी। अब आम व्यक्ति तो सोच रहा कि गुरु मोहम्मद जी ने जीवित कर दी, और वो की थी कबीर परमेश्वर ने। कहते हैं, मारी गऊ शब्द के तीरम, गरीबदास जी अपनी वाणी में अपने कबीर परमेश्वर और हजरत मोहम्मद जी की वार्ता ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को बाद में बिल्कुल जो कहते हो यथार्थ चित्रित किया, आंखों देखा हाल लिख रहे हैं। के मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। कहते हैं, जब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। शब्द स्वरूप क्या होता है? वो परमात्मा का शरीर अन्य को नहीं दिखाई देता, शरीर होता है, और जिस पर रजा बख्शते उसी को दिखाई देते। मुई गऊ हम तत्काल जिवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, मोमन मोहम्मद का गया अंदेशा। सब संदेह मिट गया हजरत मोहम्मद का। कहते हैं, जब हम मोहम्मद याद किया रे, मेरे को जब मोहम्मद जी ने याद किया, मैं शब्द स्वरूपी बेग यानी अति छिन्न में, जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई ने संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। हाँ, कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया करू जब लग धरती आकाश। अब जैसे ये पुण्यात्मा जिनसे परमात्मा सीधे मिले हैं, ये कभी इनके संपर्क में रहे हैं ये पुण्यात्मा कबीर साहब के पहले, और उस कारण उस परमात्मा शरण का मतलब है कभी भक्ति की है। जैसे आज आपने भक्ति करे और सत भक्ति प्रारंभ कर दी, और ये मान ले ना भी पार हुए तो फिर आगे कलयुग में ये चांस मिलेगा नहीं आपको, लेकिन आपकी कमाई घनी हो जाएगी, और इसके आधार पर हो सके आप स्वर्ग में भी बहुत दिन रहोगे, और फिर आगे सतयुग त्रेता द्वापर में भी आपके मनुष्य जन्म बनते रहेंगे, और फिर कलयुग में फिर आ जाओगे, ऐसे भी आपके साथ बन जाएगा। लेकिन फिर गई बात कहानी तो बिगड़ गई सारी, जिसके लिए ये मेहनत परिश्रम किया था। तो ऐसे हजरत मोहम्मद जी ने कि ये पिछली प्यारी आत्मा थी परमेश्वर की, जैसे कभी सतभक्ति की हुई थी इन्होंने, इस कारण से भी वो विशेष लगाव उस परमेश्वर का होता है। तो कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे, हम शब्द स्वरूपी बेग मैनी बिल्कुल शीघ्र पहुंच गए गया रे, और मुई गऊ हम तत्काल जिवाई, मरी हुई मृत गऊ को हमने तुरंत जीवित कर दिया जब मोहम्मद का निश्चय आई। और फिर कहा, क्या कहा कि तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, ए कबीर आप तो वास्तव में दरवेश कहो माने संत कहो, अरे अल्लाह आप ही हो। और मोमिन मोहम्मद का, मोमिन यानी मुसलमान मोहम्मद का फिर गया अंदेशा, फिर उसका संशय निवारण हुआ। उसके बाद कबीर साहब नहीं मिले उसको, पता लग गया था कि ये अब दुख आई तो मुझे याद कर लिया, और पहले मैंने कितनी विनय करी थी तो सतभक्ति संदेश दे दे, फिर भी नहीं माना था। और फिर उस समय भी परमात्मा ने कहा था कि अब भी मानकर तू ये संदेश पहुंचा दे उस परम पिता का, वो मौन रहा था, बोला नहीं, फिर भी स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि उस जबराइल नाम के देवताओं ने बहुत डरा रखा था उनको, बहुत बुरा उनको भय बैठा रखा था काल के देवता ने, दूतों ने। तो उसके बाद कबीर साहब को, कबीर साहब नहीं मिले उस हजरत मोहम्मद को। इसलिए तो आपने कुरान शरीफ में देखा था, अब यहां इतना समय नहीं क्योंकि आगे चलना, कि वो कबीर परमात्मा जो तुझे जिंदा रूप में मिला था आके, उस पर भरोसा रखना। अब ये संदेश तो उसे डरते हैं, उसका बताते हैं भगवान वो है, और फिर अपनी तरफ से उनको दिशा गलत दे देते हैं। तो ऐसे फिर क्या हुआ बाद में, ये बकरे और गऊ काटने की कैसे रस्म पड़ी, जब तक हजरत मोहम्मद रहे तब तक तो उन्होंने ये कुरीति नहीं प्रारंभ होने दी। 180,000 जब लग जीवित रहे उन्होंने कभी ये मांस खाना या बलि चढ़ाना, बकरे काटना या ईद बकरीद मनाना नहीं मनाने दिया उन्होंने। अब क्या होने लगा बाद में, कई सौ वर्ष के बाद आप फैसला कर ली कि आने वाले उनके वंशजों ने कि जिस दिन हमारे हजरत ने बकरा मारा था उसको याद बनाने के लिए बकरीद मनानी चाहिए, ताकि याद रहे कि इस दिन हमारे पीर ने, हमारे नबी ने और ऐसा कमाल किया था। उसके लिए क्या करना शुरू कर दिया, बकरा उस निश्चित दिन को बकरे को हलाल कर देते प्यार करके, कहते इसको मारेंगे नहीं, झटका नहीं मारेंगे, धीरे धीरे कलमा पढ़ते रहना, कलमा पढ़ते मार देना। अब वो कलमा पढ़े और वो रो बेचारा आत्मा उसकी तड़प तड़प कर प्रवाण निकले, फिर कहते इनको जंगल में डाल दो, यो कलमा पढ़ दिया ना, अब मांस को नहीं खाना नहीं तो अपना धर्म भंग हो जाएगा, जंगल में डाल देते, रेशम बना दी। ऐसे फिर गऊ जिस दिन जीवित की थी मृत्यु करके, ऐसे गऊ का प्रारंभ कर दिया। अब ये चल पला सरसला गांव गांव नगर नगर में ये दिन मनाने लगे, और फिर पड़ गया दुर्भिक्ष यानी अकाल गिर गया, इतना भयंकर अकाल गिर गया कि पत्ते भी खा खा छिक लिए इंसान, वर्षों में पत्ते भी ना रहे। उसी समय ये दोनों पर्व आ गए, बकरीद आ गई। अब ऐसी हर स्थान पर, हर जगह जगह पर वो बकरीद मनाई, बकरा हलाल किया, जंगल में डाल दिया, और भूखे मरते कुछ मुसलमानों ने उसका मांस खा लिया बकरे का। इस बात का अन्य मुसलमानों ने ऐतराज किया, भी मुसलमान होकर मांस खा लिया, इसका निकम्मा काम कर दिया, इसको जाति धर्म से निकाल दो, इसको ये कर दो, इनको सजाए दो। ऐसी सजाएं दी जाती थी उनको कि अगर मांस कोई खा लेना फिर उस प्राणी के बदले में, जैसे एक बकरा खा लिया मार दिया, या कोई किसी ने वैसे भी जीव हिंसा कर दी किसी मानस की, वो सजा दी जाती थी कि या तो 10 ऊंट या 100 ऊंट या 50 ऊंट ऐसे नियमित किया करते थे, और ऊंटों को खाना नहीं उनको बेचकर, क्योंकि पहले धन यही होता था उनके, उनको बेचकर धार्मिक का भंडारे धर्म में लगाओ, ये सजा दी जाती थी अगर कोई ऐसा मांस खा देता था या कोई जीव हिंसा कर देता था। तो ऐसी ऐसी घटना हर जगह होगी, सभी जगह से कई लोगों ने मांस खा लिया, उनकी सजा के लिए फिर मुख्य मौलवी काजियों के पास ये घटना पहुंची, बात पहुंची, तो उन्होंने सोचा भाई ये तो बात बिगड़ गई अब, क्योंकि मांस खाने वाले को सजाए मौत भी दे दे तो भी थोड़ा था, ऐसा प्रावधान मुसलमान धर्म में बताते हैं प्रारंभ में। अब उन्होंने सोचा भी इतना को सजा देना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हजारों की संख्या में दोषी पाए गए, जब मुख्य एक स्थान पर वो सबकी शिकायत पहुंची, निर्णय लेना था क्या सजा दें, तो उन्होंने एक सलाह बना ली, भाई देखो ये अच्छा नहीं है इस तरह सबको सजा देना, ये कह दो कि कलमा पढ़ने से वो बकरे का मांस पवित्र हो गया था, वो तो प्रसाद बन गया था, और भाई वो प्रसाद तो खाया ही इन्होंने, लेकिन वैसे कोई जीव हिंसा करके बकरा काट के खाएगा तो वो उसको महान पाप होगा, खबर उसको बड़ी सजा मिलेगी। अब उनको माफ कर दिया, इस बात को सबने मान लिया, भाई ठीक है जब आदेश सही है तो बकरा पढ़ कलमा पढ़ गया था इसके लिए, इसको ये तो प्रसाद बन गया था। अब उस समय उन महापुरुषों का ये बचाव करना अत्यावश्यक हो गया था, और इस प्रकार फिर यह कुरीति का रूप धारण कर दिया। अब आज इसका ये भयंकर रूप धारण हो गया। ऐसे फिर गऊ का समय आ गया, अब वो काट तो देते पर जीवित ना कर सकते अब, और हजरत मोहम्मद ने काटी भी और जीवित भी कर दी। अब यहाँ कबीर साहब अपने प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद की फिर बड़ाई करते हुए कहते हैं, क्योंकि ये अपने सर नहीं लेते अपनी बड़ाई को, कहते मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, शब्द फिर जवाई हंसा रखा गोस्त न भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। तो कितनी प्यारी बात कही कि तुम अगर उनकी उनकी नकल करते उन महापुरुषों की, तो उन्होंने तो वो गाय मारी थी ना शब्द तक, और फिर जीवित कर दी थी, मांस नहीं खाया, वो जीव उसका नो का सुरक्षित कर दिया था, और ऐसे पीर मोहम्मद भाई हंसा रखा उसका जीव जीव बचा दिया, हंस माने जीव ज्यो का त्यों बचा दिया, और मांस नहीं भाख्या मांस नहीं खाया बख्या, ऐसे पीर ऐसे महापुरुष थे ऐसे देव वो गुरु थे तुम्हारे हजरत मोहम्मद, अरे तुम ये गलती कर रहे हो। अब क्या कहते परमात्मा के देखो मुसलमानों, काजियों को और मौलियों को की तरफ संकेत करते हुए कहते कि ये अगर इन काजियों को इन मुल्लाओं को अगर ये पूरा विश्वास है कि बकरा क्या कहते हैं ये कि हमने बकरे की रूह ना स्वर्ग भेज दी विष्ट में, और हम तो फिर ये पवित्र कलमा पढ़ने से मांस पवित्र हो गया, प्रसाद रूप में खाते जरूरी खाना चाहिए सभी ने। अब कबीर साहब कहते ना दानो, अगर ऐसे गर्दन देने से और ये इस बकरे की रूह पहुंच जा स्वर्ग में तो कौन नंबर आने दे भाई बकरों का, शेख फरीद जैसे मंसूर जी जैसे महापुरुषों ने और मूसा जी जैसे ने हजरत मोहम्मद जी जैसा ने अपनी घोर तपस्याएं की थी, जैसा उनको साधन मिला इस स्वर्ग प्राप्ति के लिए, और उन्होंने मंसूर जी ने अपना शरीर सौंप दिया था टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर भी उन्हें परवाह नहीं की थी, और तुम बकरे को स्वर्ग भेज रहे हो और आप पीछे रह गए। अगर तुमने पूरा विश्वास होता ना पूरे परिवार पर कलमा पढ़ देते और स्वर्ग में पहुंच जाते, कौन रहे से गंदे लोक में कितने कष्ट इसमें। तो कहते हैं जय या रू, एक एक मुल्ला मस्जिद में कुके एक पुकारे बोका। अब हजरत मोहम्मद ने तो वही प्रार्थना की थी जब गाय नहीं जीवित हुई, अल्लाह अकबर। अब वह क्या करते हैं लोग, वो एक तो मस्जिद में चढ़ जाएगा ऊपर मुल्ला तय, ए अल्लाह अल्लाह अकबर, ए भगवान हे अल्लाह, इसको बस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना भीष्ट में, और एक वो बोक बकरा उसकी गर्दन काटी जा रही, वो मेमा मेमा का वो रो रो कर तड़फ रहा है, और तुम उसको सिफारिश करे वो परमात्मा को, तुम्हारी सिफारिश मानेगा जो दूसरे की इंसा करे वो परमात्मा। तो कहते हैं एक मुल्ला मस्जिद में कूके एक पुकार है बोका, और इनमें कौन स्वर्ग में जागा, मुझे लग गया धोखा, ना तो मुल्ला स्वर्ग में जावे और न बकरे को तो जाना, कहां बेचारे उसकी गर्दन काटी जा रही। फिर क्या बताते हैं कि भाई आज जो मुल्ला बकरे काट रहा है ना, अगले जन्म में बकरा तो मुल्ला होगा और मुल्ला बनेगा बकरा, ये अपना बदला लेगा, ये बदला नहीं टला तुम्हारा से कितने सिर पटक लो ऐसे जुल्म करते रहोगे तो, परमात्मा कबीर साहब बताया करते थे। फिर कहते हैं कि जय या रू ते बिष्ट पठाई, अगर तेरे पर पूरा विश्वास है कि तने इस बकरे की आत्मा को स्वर्ग भेज दिया तो कर तदबीर कबीला भाई, जब जाने तू अपने बच्चे अपने परिवार ने पढ़ देकर कलमा एक बह कर तदबीर कबीला भाई। अब इन बातों से मुसलमान तो नहीं नाराज हुए, मुसलमानों के गुरु नाराज हो गए जिनकी रोजी रोटी और सच्चाई सामने आवे थी, वो कहने लगे ये तो बड़ा नीच है फलाना है ये ऐसे करता है वैसे करता है। एक दिन क्या हुआ, सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह और कहां पहुंच गया, काशी में बनारस, बनारस पहुंच गया तो और बनारस में काशी में हिंदू राजा बीर देव सिंह बघेल का शासन था और उसमें मुसलमान उनसे शिकायत नहीं कर रहे और उधर से वीर सिंह देव बघेल कबीर साहब के शेष हो चुके थे तो मुसलमान लोग इसलिए चुप रहते थे कि अगर वीर देव सिंह को इसकी शिकायत करेंगे तो ये हमारी नहीं सुनेगा क्योंकि इनका शिष्य है। और जिस दिन वो दिल्ली के बादशाह सम्राट वो सिकंदर लोधी वहां पहुंचे तो उनको सुअवसर मिल गया, उन्होंने जाकर शिकायत की, कहने लगे जी एक काशी में जुलाहा है वो ना हिंदू ना मुसलमान, वो काफिर है और हमारे मजहब की तोहिन बहुत करे, भगवान राजन हमारा कोई जीवन नहीं छोड़ रखा उसने, हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। और वो कहता मैं खुद अल्लाह हूं, मैं खुद भगवान हूं, मैं वही अल्लाह अकबर हूं जिसकी तुम रोज पुकार करते हो, और मुसलमान धर्म इतना आरूढ़ है अब तो नरम हो गए थोड़े से कि कोई यूं कह देना कि भगवान आकार में उसको कहते हैं बिस्से बोल सजाए मौत दे दो, वो झूठ बोल रहा काफ़र, वो पाखंडी है, भगवान आकार में नहीं है, और कुरान शरीफ बताओ आकार में उसका नाम कबीर। तो इससे क्या है कि इन दो मुसलमानों का दोष नहीं, मुसलमानों के गुरु पीर जो लास्ट में उन पवित्र आत्माओं के पास जो वे पेट भर हो गए, इन्हें न शास्त्रों का ज्ञान, ऐसे हिंदुओं के जो अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों उठाकर देखा नहीं उन्होंने लिखा क्या है, ऐसे अब सिखों के अब उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में क्या संकेत आदेश उस पवित्र आत्माओं का, वो नहीं पढ़ पा रहे अपनी दंत कथाओं तक, फिर इनको मांस खाने पर उड़ कर दिया। एक छोटी सी पुस्तक है मेरे पास सिख धर्म की, उसमें क्या लिखा है कि जैसे ना बकरा तो खाओ लेकिन ऐसे मत, ऐसे हलाल मत करो जैसे मुसलमान करते हैं, झटका करके खा लो कोई पाप नहीं। या भी वो अब पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं है ऐसा वर्णन नहीं है, तो अब इन ऐसी दंत कथाओं की कहानियां बन गई, अब बात बिगड़ेगी। तो कबीर शाह सिकंदर लोधी बड़ा जो है ना इस बात से अक्षुब्ध हुआ और एक आध दिन कह दिया जी हमारी कोई सुनवाई ना करता, ये यहाँ का राजा हिंदू है और ये इनका शिष्य है। सिकंदर बोला भी लाओ बुला के उसको, पकड़ के लाओ उसको, कौन ऐसा कमबख्त। अब गए 10 सिपाही गए एक एक व्यक्ति को, एक आदमी को पकड़ने के लिए। जब कबीर साहब को लेकर आगे और खड़ा कर दिया, हजारों की संख्या में दर्शक भी और वो काजीर मुल्ला सारे इकट्ठे हो गए, तो एक गऊ मंगा रखी थी कि ये अपने आप को अपने आप को खुदा कहता है ना कबीर, अल्लाह कहता है, तो आज परीक्षा लेंगे इसकी। अरे क्योंकि पहले भगवान से डरा बहुत करते थे हिंदुओं से मुसलमान, अब तो सबका भय निकल गया क्योंकि नास्तिक तक चल पड़े हम, जब तक ये सतभक्ति फिर नहीं मिलेगी तब तक हमें फिर डर भगवान का हो नहीं। उसमें डरा बहुत करते, वैसे राजा था, उसने सोचा कहीं कोई भाई ऐसा व्यक्ति है जब ऐसा कह रहा है तो कोई बात हो सके इसमें, तो पहले परीक्षा लेता हूं। एक गाय मंगवा ली, एक गाय मंगवा ली जो गर्भवती थी, ग्यापन गाय मंगा के खड़ी करवा ली वहां पे। और कबीर साहब को जब लाके खड़ा किया तो राजा सिकंदर लोधी बैठे और साथ में मंत्रीगण, हजारों की संख्या में दर्शक और राज दरबार के सामने। कबीर साहब से कहा उसने, सिकंदर लोधी ने, कि बोल कबीर तू कौन है, अब कैसे बैठा मौन, अब क्यों चुपचाप बैठ गया तू, आके बैठा दिया नीचे कबीर साहब को। अब बोलता क्यों नहीं, तू अपने आप को अल्लाह कहने वाले, तो खुदा को कहता अपने आप को। कबीर साहब खड़े हो गए, खड़े होकर कहने लगे हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर और गरीब दास खालिक दनी, मेरा नाम कबीर, मैं वही अकबर हूं जिसको तुम रोज याद करते हो, मैं वही कबीर हूं। हम ही अलख अल्लाह हैं, अलख माने जिसको तुम बेचून कहते हो, जो दिखाई ना देता निराकार, वो अल्लाह मैं हूं। और कुतुब गोश और पीर, वास्तव में कुतुब भी मैं हूं, गोश भी मैं हूं और पीर भी मैं हूं, अर्थात वास्तव में जो वास्तविकता भक्ति दूंगा गुरु रूप में मैं ही हूं, और जो राहत दूंगा वो मैं ही हूं, यानी भगवान भी मैं हूं और वास्तव में गुरु भी मैं ही हूं। जैसे रामानंद जी ने कहा था तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दो जान से, तू ही भगवान तू ही दास तू ही देव तू ही जगत गुरु तू ही तत्वदर्शी सब कुछ तू ही है परमात्मा, और आप ही अपना सब रोल करके हमारे उद्धार कर रहे हो। जब ये कहा कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर गरीब दास खालिक दनी, खालिक माने सारी सृष्टि का मालिक, खलक होती है प्रजा सारी सृष्टि और मैं उसका खालिक माने मालिक, मैं सबका धनी हूँ और मेरा नाम कबीर, मैं कुल मालिक हूँ, जगत गुरु। इस बात से सिकंदर लोदी, क्योंकि राजा था, एकदम क्रुद्ध हुआ। कहने लगा भी अगर तू अल्लाह है ना तो तेरी परीक्षा लेते हैं नहीं, अगर ये गाय कटवाता हूँ इसके टुकड़े करवाऊंगा, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद ने जो नबी था वो प्रभु का कृपा पात्र था, उन्होंने गाय को जीवित कर दिया था मृत्यु मार के, अगर तू गाय जीवित कर देगा तब तुझे अल्लाह मानेंगे, नहीं तो तेरी गर्दन को अभी सभा में कलम कर दूंगा। अब क्या किया, आदेश दे दिया सिकंदर लोदी ने कि इसको बिस्मिल कर दो, इस गाय को बिस्मिल कर दिया। धार्मिक लोग पहले भी थे, उन्होंने कलमा पढ़ा पहले और फिर उसको गाय को ऐसे काट दिया, दो टुकड़े कर दिए, बीचों बीच मां और बेटा के दो टुकड़े हो गए। अब कहने लगा इसको जीवित कर दे, इस गाय को जब जानू तुझे तो खुदा अल्लाह है। कबीर साहब खड़े हुए, एक थपकी उसकी मां के गाय के शरीर का लगा दी, एक लगा दी बच्चा के, वो दोनों जीवित हो, ऐसे दोनों जीवित होकर खड़े हो गए, निशान भी नहीं था जैसे कटे हो कभी, और बच्चे को लगा के माँ के गाय के नीचे और दूध की बाल्टी ठोक दी। बोलो सतगुरु देव की जय, कबीर साहेब की जय। और फिर जब ये देखा करिश्मा, सबके पैरों तले की मिट्टी निकल गई, सिकंदर लोदी खड़ा खड़ा मुख की तरफ देखा, ये के कहानी बन गई। तब उस परमेश्वर ने कहा था, गऊ अपनी अम्मा है इस पर छुरी मत बा, गरीब दास की दूध ने सभी आत्म खा। कहने के ना दानो, तुम इस गाय का दूध पियो, घी खाओ और इसके बच्चे जो है तुम्हारा हल चलावे, और इसी का फिर तुम एक बार मांस खा के इसका काम बिगाड़ रहे हो, ऐसा जुल्म मत करो। तुम गऊ अपनी अम्मा है, माँ क्यों कहते हैं, जिसका दूध पियो वो माँ कब आवे, माँ उसी को कहते हैं जिसका हम आहार ले, दूध पिया उसकी उसको माता कहते हैं। इसलिए कहते हैं गऊ अपनी अम्मा है, सबको हिंदू और मुसलमानों के मना नहीं करती चाहे कोई दूध पियो, और फिर तुम इतना इसके साथ जुल्म करते हो, आपने एक बार इसका मांस खाकर काम बिगाड़ दिया, या मनमाने 10 वर्ष तक तुम्हें दूध भी दे और घी भी दे और खूब थारा आहार पोषण करे तुम्हारे पेट का बच्चों का, इस निर्दोष पशु को मार देना, कौन से मजहब और शास्त्र में लिखा है। तब कहा था कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 180 को सौगत जिन नहीं कर चलाया। कहते हैं अर्श कुरस पर अल्लाह तकत है, यानी सबसे ऊपर वाले आसमान पर सतलोक में वो अल्लाह यानी पूर्ण परमात्मा का तकत, यानी वो उनकी राजधानी वो स्थान है। अर्श कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और उस परमात्मा की दृष्टि से एक जीव भी नहीं बचा है, वो इतना समर्थ है उसके निराकार रूप में, यानी उसकी शक्ति उसकी जैसे राजा है, निराकार शक्ति उसका खोप हिंदुस्तान के कण कण में विद्यमान है, और आकार में वो अपने दिल्ली बैठा है। तो ऐसे कहते हैं अर्श कुरस पर अल्लाह तकत है, पर खालिक बिन नहीं खाली, उसकी रेंज के वो सब उसके रेंज के अंदर आते हैं, क्योंकि वो समर्थ परमेश्वर एक सेकंड में हरेक का निरीक्षण रखता है। अब जैसे सूर्य है, सूर्य आज हम यहाँ भी देख रहे हैं और महाराष्ट्र में भी देख रहा हूँ, व्यक्ति मेरे पास है, और वो ऐसे ही वो परमात्मा हर जीव के ऊपर उसकी दृष्टि है, हर जीव के। तो क्या बताते हैं कि अल्लाह अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, और वो खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगम्बर पास पाक पुरुष के साहिब के अब्दाली, वह पैगम्बर तो पवित्र आत्मा थी जो हजरत मोहम्मद मूसा जी जैसे, और साहिब के अब्दाली यानी परमात्मा के कृपा पात्र थे, जिसकी भी उपासना कर रहे थे, जैसे वो शिव के उपासक थे तो शिव के, मूसा जी विष्णु लोकताए थे, विष्णु जी के कृपा पात्र थे, और ईसा जी भी विष्णु लोकताए थे, वो भी कृपा पात्र थे उन्हीं के। तो कहने का भाव ये है, और आदम जी जो थे वो ब्रह्मा के कृपा पात्र थे, ब्रह्मा के लोकताए थे। तो वह पैगम्बर पाक पुरुष थे साहिब, साहिब माने भगवान के, भगवान माने जिस इष्ट की जो साधना करता उसी भगवान के वो कृपा पात्र रहे हैं, उन पर उनकी 76 साहब ने। वह पैगम्बर पाक पुरुष थे, पाक माने पवित्र आत्माएं थी साहिब के अब्दाली। और फिर कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, खालिक बननी खाली, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, उस अपने भगवान का, किसका, शिव का, रसूल माने अवतार कहलाया, और 180 को सौ जिन नहीं कर चलाया। और फिर तो सारे कप खड़े खड़े खिसक गए, नीचे नीचे सौरे, यू तो भाई बात बिगड़ गई। और परमात्मा ने उस सिकंदर लोधी को ऐसा रूप दिखाया, बिल्कुल तेजो में भयंकर नहीं, जमीन से लेकर आसमान तक परमात्मा का शरीर दिखाई दिया, इतना सुंदर तेज, चरणा में गिर गया और पैर पकड़कर माफी मांगे। کہ اکسما کرو اللہ کی ذات، اکسما کرو خدا مجھے غلط ہوگی، میری غلطی ہوگی، پاپی کو معاف کر دو. سمیت مکٹ کے چرنوں میں گر گیا سکندر لودھی، دلی کا سمراٹ. تب کبیر صاحب بولے ٹھیک ہے، اپنی بھائی بھکتی کرو ڈنگتا ہے، اور ہم کسی کو غلط مارگ درشن نہیں کر رہے، ہم وہی بتاویں جو ہمیں بتانا چاہیے تھا، ہم غلط نہیں بتا سکتے. یہ آپ کے جو گرو ہیں ہندو اور مسلمانوں کے، انہوں نے نہ تو اپنے شاستر پڑھ رکھے، اور تم کو شاستر ودھی کے ورد سادھنا کرا کے نادان آپ کو نرک کے باغی اور کال کے مکھ میں ڈال رہے ہیں. میں تمہاری بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، ماننا مت ماننا یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، پر کشٹ اٹھاؤ گے جو پرماتما کا آدیش الگن کر کے. سکندر لودھی نے اس پرمیشور کے لیے پالکی منگوائی، اور پالکی میں بٹھائے مالک کو، اور آگے بینڈ باجے بجا کے جھونپڑی تک پہنچا کے آیا وہ کبھی، اور ساتھ گیا ان کے ساتھ ساتھ، اور آدر سے پھر چرن وندنا لے کے واپس آیا. بولو ست گرو دیو کی جے. اب وہاں جا لیے نا پرماتما، جب اس کی ماں منہ بولی ماتا کبیر صاحب کی، نیما لگا کے اپنے بیٹے نشینے تے پرماتما کو، اور نو کہتی رہے کیوں کیوں مت چھیڑا کر بیٹا، تو ان کو یہ آدمی نہیں ہے بیٹا، نہ ہندو نہ مسلمان. کیونکہ دیکھو گیتا جی کے ساتویں دہ کے پارہ سے لے کر پندرہ سلوک میں یوں لکھا ہے کہ تینوں گن تک کے اپاسک، رج گن برما ست گن وشنو تم گن شیو جی کے اپاسک، یہ راکشس سوبھاؤ کا دھارن کیے ہوئے منشیوں میں نیچ مورکھ، یہ میری بھکتی بھی نہ کرتے ارجن، یہ تو راکشس سوبھاؤ کے ہیں. اب مسلمان بھی شیو کے اپاسک اور ہندو بھی شیو کے اپاسک، دونوں لڑے بچیاں کی طرح. جو کہ وہ کہ ہمارا اللہ بڑا، وہ نو کہ ہمارا رام بڑا. ارے بچے لڑا کر چھوٹے چھوٹے، وہ نو کہ آگرہ. اب جیسے دو بچے، ایک بالک نے نو کہہ دینا چھوٹے نے میرا پاپا ہے، انہوں کہا نہیں میرا پاپا ہے، انہوں نے اس کی گردن پکڑ کر مکہ مکہ ہو جائے، اور پاپا ایک دونوں کا. تو ایسے یہ لڑائی اجان پڑے کی، اور ان کارن ان کا یہ انجان سنت ہے، نہ ہندو دھرم سے پریچت، نہ مسلمان مسلمان دھرم سے پریچت ورتمان کے، اور نہ عیسائی اپنے مول شاستر سے پریچت، نہ سکھ اپنے مول سدگر اس گرو گرنتھ سے پریچت کے اس میں کیا ورنن ان مہاپرشوں کا ہے. اس کر کے ہم الگ الگ بن بیٹھے، اور اس کو سوچیں سمجھیں وچار کریں تو پھر ایک ہو جائیں گے جیسے، اور یہ سندیش وہ پرماتما میں دینے آئے تھے. اب سکندر لودھی تو آ گیا اور بہت پربھاوت ہوا، پھر بھی بہت سے ایسے کارن بنے. ایک بار کیا ہوا کہ انہوں نے سب اپنی، کیونکہ یہ گرو لوگ نہیں مانا کرتے، ان میں مان بڑائی گھنی ہو جاتی ہے، اور مان بڑائی جس میں ہو جاتی وہ کبھی نہیں مانے، اس وہ سے مرتو بے شک ہو جائے، وہ اپنی بھول کو بھی اپنی غلطی نے بھی سویکار نہیں کرتے. عام سماج تو مان سکتا ہے. کیا بتایا کہ کبیر صاحب کہتے ہیں راج تجنا سہج ہے اور سہج تریا کا نے، مان بڑائی ایرسا درلب تجنا اے. گھر بھی تیاگ دیں گے، اور بھائی پتنی کو بھی تیاگ سکتے ہو، اور جب بن جاؤ گے نا مہنت یا سنت نکلی، اور پھر کہتے مان بڑائی ایرسا درلب تجنا یہ، اور یہ تجے بنا بھگوان نہیں مل سکتا چاہے کتنے یوگ بیٹھے رہو. صاحب صاحبان بھگوان پرماتما کے، صاحب کے دربار میں یہ گاہک کوٹ انت، چار چیز چاہتے ہیں یہ ردھی سدھی مان مہنت. صاحب کے دربار میں ایسا کوئی ایک، ان چاروں کو تیاگ کہہ دو چاہے پرش الیک. اوئے ہوئے الیک مانے اورننیے، اس اورننیے پرماتما کو جو چاہے سمجھو، ان چاروں نے چھوڑ کر ہی دیسی دیمان اور مہنتائی نے سنتائی نے نکلی سنت بنے بیٹھے، ان کو جو چاگ کے ایسا کوئی ایک ملے گا اس پرماتما کے دربار میں نہیں ہوگا. گائک سوداگر بہت گنے، سبھی سوداگر ہے، لیکن چار چیز چاہتے ہیں یہ ردھی سدھی مان اور مہنت، اور اس پرماتما کے دربار میں ایسا کوئی ایک سوداگر ہے جو سب نے تیاگ کر پرماتما کو چاہے. ایک سمے کیا ہوا، ان نکلی گروہوں نے ہندو اور مسلمانوں کے سکیم بنائی، بھائی کسی پرکار نہیں مانتا، और इसने मार कबीर साहब को काटा, मतलब ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। किसने? शेख तकी ने, जो सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु था। और ऐसे गुंडे ले गया तीन चार रात ने कि यूं तो मानता नहीं, जो ऐसे करेंगे ठीक इसको। अब टुकड़े टुकड़े कर दिए परमेश्वर के, रुई रुई जैसे वो गुंडे बताओ थे ने, बोले हम तो ऐसे तलवार मारते थे रुई में लगे थी, हमने तो कोई करड़ापन लगे है कोई नहीं इसमें। और जब वो चलन लगे ना शेख तकी ने सोचा अपन की बात साथ ही गया हुआ था, कट गया टंटा। तो कबीर साहब खड़े हो गए और कहने लगे आ जाओ भाई शेख तकी बच्चों, कुछ दूध पान करके जाना, रात का टाइम चांदनी रात है। अब वो बुढ़ा ने देखा कि तो उठ गया भाई आदमी, तो जीवित हो गया, उनका डर गए हुए भयभीत हो गए और उनका अंदर ही पेशाब निकल गया। तीन चार आ गए तो बुखार चढ़ा रहा कई दिन तक। परमात्मा गए उनको कहा भाई कोई बात ना बेटा, मैं मरने वाला आदमी को नहीं, क्या नहीं बेवकूफ के चक्कर में तुम शेख तकी के चक्कर में मत आइयो बेटा, और कोई बात नहीं, मैं भूत भी नहीं प्रेत भी नहीं, और मैं तो भाई जो हूँ वो तुम बाद में समझ पाओगे। जब उनका बुखार उतरा उनके सीने से लगाया मालिक ने, यानी अपने को मारने वालों के भी पास जाकर उनका कल्याण करना पड़ा। दाता ने मालूम है उसको कि ये गुमराह किए गए इन बोली इन नादान संतों के द्वारा। और एक बार कबीर साहब को सरसों के उबलते हुए तेल में कढ़ाई में डलवा दिया शेख तकी ने कि हम जानेंगे अल्लाह इसको, क्योंकि सिकंदर लोदी का जलन का रोग ठीक कर दिया था। इस अब वो भयंकर बीमारी थी सिकंदर लोदी की, कितना ठीक नहीं हुई, ना जंतर से ना मंत्र से ना वैद्य से ना किसी दवा से, तड़फ रहा था। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा था, कबीर साहब ने तुरंत ठीक हो गया। और ऐसे कबीर साहब के गुरुदेव राव श्री रामानंद जी की हत्या कर दी थी सिकंदर लोदी ने किसी कारण से, फिर बताएंगे कथा बात में आपको। और जिसके वो फिर तुरंत कबीर साहब ने उनकी आंखों के सामने उस सिकंदर लोदी को जीवित कर दिया था। शेख तकी की एक जिद के ऊपर कि मैं जब मानू कोई और मेरे सामने मुर्दा जीवित करे, तो एक सब बहता हुआ आ रहा था 13 वर्ष के बालक का एक नहर में, सिकंदर लोदी और हजारों सैनिकों के सामने परमात्मा ने वो भी जीवित कर दिया था और अपने बच्चे के रूप में कमाल के नाम से अपने साथ रखा था। लेकिन बुद्धिहीन प्राणी मान्या नहीं, तो कहने लगा हम तो जब माने जब इसको कढ़ाई में तेल में फूक के देखेंगे भगवान है। अब सिकंदर लोदी भाई डरे अपनी उसने कि ये शेख तकी जो है सारे मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों में सबसे एक नंबर का पीर है यो, और इसकी सब मानते हैं, कहीं तेरे राजकाज में खतरा ना हो जा, चुप हो गया। तो कहने का भाव ये है कि कबीर साहब को उबड़ते हुए तेल के कढ़ाई में रख दिया, वो तो रखना के वो कहने लगे पटको इसने ठाक। कबीर साहब बोले भाई ये तकलीफ भी मत करो, ये भी कष्ट नहीं देता मैं आपको, मैं आप ही बैठ जाता हूँ। कबीर साहब उस कढ़ाई में जाकर ऐसे बैठ के जैसे बिल्कुल सुहाने जल में बैठ जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर हो किसी जल का या तेल का, उसमें ऐसे बैठे हैं और तेल ऐसे उबल रहा नीचे, बट पूरे लकड़ डाल रखे खूब जला रखा, नहीं सोते भी ऊपर टेम्परेचर जा रहा उसका। तो उस समय सिकंदर लोदी ने सोचा भाई महाराज जी मर नहीं रहे, तो शेख तकी बोला इसने ना तेल की तासीर ठंडी कर दी जंतर मंत्र पे, तेल गर्म नहीं रहा अब, ये बड़ा जादूगर है। सिकंदर लोदी ने सोचा भाई चल चेक कर लेते हैं शायद यह ठंडी होगी हो। कबीर साहब कहने लगे राजन इस नादान के चक्कर में आके इस उंगली मत दे देना, उंगली ढूंढी नहीं पाओगी तो बहुत गर्म है। सिकंदर लोदी ने सोचा गुरु जी भी तो बैठे हैं, क्या फर्क पड़ा है, महाराज जी भी तो बैठे, मेरी उंगली में क्या होगा, उंगली दी ऐसे जितनी उंगली गई थी ना उतनी ही कट के अलग होगी, इतना तेज टेम्परेचर था। और बेहोश हो गया सिकंदर लोदी, पड़ गया पछाड़ खा के, चक्कर आ गया पीड़ा से। परमात्मा बाहर आए, बाहर आकर के उनको होश में लाए, उस पीड़ा से फिर बेहोश हो गया क्योंकि उंगली कट गई थी कति। परमात्मा ने क्या किया, पकड़ के उंगली ये पूरी कर दी, सारे देखे पूरी होगी, दर्द रहा है नहीं, फिर बैठ गए सिकंदर लोदी, ओए होए चरणा में गिर गया, माफी मांगे हाथ जोड़े, परवरदिगार में विवश हूँ, अक्षमा करो, कोई बात ना बेटा, सारे विवश है पर हम विवश नहीं है किसी के। बोलो सतगुरुदेव की जय। फिर क्या किया सिकंदर लोदी ने, उस शेख तकी का फिर भी चैन नहीं पड़ा, तेरी प्रभुता गई और ये सिकंदर लोदी तो कबीर साहब को ज्यादा चाहेगा, तेरी यहाँ चौधर खत्म होगी, अरमान बड़ाई का झगड़ा यहाँ सारे लोग करें और भगवान इससे दूर है। फिर मुसलमानों को इकट्ठा करके कहा जी सिकंदर लोदी से कहा कि एक परीक्षा और लेंगे। वो क्या ली, एक जेरा कुआ था बहुत गहरा बिना पानी का, बहुत पहले 150 फुट 200 फुट गहरे कुएं हुआ करते, और वो भी जेरा क्या होता था उसके नीचे की मिट्टी बहुत दूर तक बह जाती थी, उसका ना मेरा कितना लंबा चौड़ा होता था। कहते इसमें डालेंगे इसको और ऊपर से कंकर पत्थर ठोकेंगे, अगर फिर जीवित हो गया फिर देखेंगे। अब ठीक है, शेख तकीर ना ले जाके कबीर साहब को, कबीर साहब उसमें छलांग लगाएंगे, मालिक ऊपर से हजारों की संख्या में समर्थन जा रहे शेख तकी के, उसमें कंकर झाड़ जंखा झाड़ कांटेदार झाड़ियां किक करके छड़े और गोबर गारा छोटी ईंट ऊपर तक ठकवा दिया, ताकि देखेंगे बच गया यो। तो क्या किया आपने, हाथ पैर मुंह धो के सारे वो 10-20 जने पहुंचे सिकंदर लोधी के पास और कहने लगे कहां गया वो तेरा गुरु पीर, कहा करते थे भगवान है अल्लाह है, कर दिया काम उसका, अब देखेंगे कहां से आएगा। सिकंदर लोधी कह रहा है कि किसकी बात कर रहे हो आप, किसकी बात कर रहे हो, कबीर की। कहते वो बैठे गुरु जी तो अंदर कमरे में, जिस कमरे में ठहरे हुए थे सिकंदर के पास उसी कमरे में, कहने लगे वो बैठे गुरुदेव तो कहां बैठे, अब देख जाके देखे तो सामने बैठे, कहा जा शेख तकी न्यो करके मुंह चाल पड़ा निकम्मी आत्मा, फिर भी नरम नहीं हुआ। वो कहते हैं साकट और साकट सनका जीवड़ा ये भी ज्ञाते करड़ा है, हर चीज नरम होती है संतों के सामने, नीच आत्मा करड़ाया करती है और फिर उसका हर्ष बहुत बुरा होता है। अब जब इन्हें देख लिया ना भाई ये तो किसी प्रकार भी काबू में नहीं आ रहा, अब के सोचे इसका, इन्होंने के सोचा हिंदू और गुरु मुसलमानों के इन नकली गुरुआ ने मिलकर एक झूठी चिट्ठी डाल दी कि कबीर भंडारा करेगा सभी संतों और मेहनतों के, क्योंकि एक एक मेहनता के बिना 100-100, 200-200 शिष्य होया करते, 1000-1000 शिष्य वो होते थे जो दिन को संत बना रखा रोजी रोटी मांग मांग कल्याण खातिर, वो हजारों की संख्या में होते थे और कई हजारों की संख्या में गुरु, कई हजारों की संख्या में उनके शिष्य, सबको चिट्ठी भिजवा दी और आम जीव भी कोई आओ खुला भंडारा 3 दिन का लिख दिया और एक और लिख दिया कि सबको एक एक दो दो सरफी देगा और एक एक दौर साथ में जो भोजन खाने होंगे ना संतों को वो दौर भी सरफी भी देगा। इस लालच में और गिने आगे 18 कहते 18 लाख व्यक्ति आगे, 18 लाख है परमात्मा काशी में 18 लाख, 180 जने थी आ जाना यानी बराती 180 आ जाए तो भी जो ना सारे गांव न ला दे, और उस जो लड़की वाले ने चिंता बनी रहती है कि भगवान कहीं राशन पानी कम ना हो जाए, 180 में और वहां 18 लाख। अब सुबह सुबह रविदास जी और कबीर साहब ज्यादातर इकट्ठे रहा करते, क्योंकि कबीर साहब से ही रविदास जी को फिर नाम उपदेश मिला था, क्योंकि पहले तो रामानंद जी से दिलवाया कबीर साहब ने उनकी भ्रम तोड़ने के लिए कि जाति मजहब खत्म करी, जाति मजहब खत्म करी, और फिर रामानंद जी ने कह दिया भी मेरा कोई शिष्य नहीं, क्योंकि उनको आत्म परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन हो गए थे, कबीर साहब सतलोक में ले गए थे फिर दिखाए, तो उसके बाद नाम देना भी बंद कर दिया, अपने आप को गुरु भी डिक्लेयर नहीं किया, अभी मैं गुरु नहीं रहा तुम्हारा। तब रविदास जी ने कबीर साहब से उपदेश ले लिया था, यानी ऐसे जन महापुरुषों ने यह ज्ञान हो गया कि परमेश्वर है, तो रामानंद जी के जितने शिष्य थे जो योग्य थे उन्होंने कबीर साहब की शरण में आ गए थे और वो उनके गुरु हो गए थे। रविदास जी और रामानंद जी ज्यादातर इकट्ठे रहा करते थे, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की भूख सदा बनी रहती है, कबीर साहब भगवान आ रहे और प्यारी आत्मा रविदास जी। अब जो कहते हैं जो सुख संत की शरण के संग में वो स्वर्ग में भी ना हो, ऐसे शीतलता बनी रहती है जब हम सत्संग में पूर्ण संत के पास आते हैं, तो वहां ज्यादातर वहीं रहा करते थे, शाम ने देर तो जाया करते अपने घर में। आज जब अपनी झोंपड़ी से सुबह सुबह जंगल पानी यानी घूमने फिरने निमटने के लिए रविदास जी चले तो क्या देखा, वहां देखा भाई दुनिया बहुत बनी आई हुई है 18 लाख की संख्या में, और वो पूछने लगे रविदास जी के भाई कौन हो, कहां से आयो महापुरुष हो, आज क्या हो रहा काशी में। रविदास जी से पहले तो सैकड़ों ने पूछ लिया था उनका भी कैसे आए हो, क्या हो रहा है, किस कारण से आए हो। वो कह रहे थे काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं हम इतनी दूर से आ गए हैं कि यहाँ भंडारा है भाई 3 दिन का, कौन कर रहा है कि कबीर, कौन कबीर कि वही नीरू का पुत्र रविदास जी उसके मुंह की मुख की तरफ देखा, भी कल शाम तक तक गुरुदेव के पास मैं बैठा था, कोई जिक्र भी नहीं था, कोई चर्चा नहीं चली कभी। तो उसने पूछा भी कोई पत्र है तुम्हारे पास? कहा बगैर पत्र के थोड़ी आते हैं, सब ने वो निकाल निकाल इस तार दिखा दिए। अब रविदास जी कहां का निपटने जावा था बेचारा, वो तो सिट्टी फिट्टी गुम होगी कि आज बात बिगाड़ दी। सही वापस आ गए और कबीर साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा परवरदिगार अब और कोई अल्टरनेट नहीं रहा, तो कहां सी त्यागनी पड़ेगी अपने, अब कोई और इसका विकल्प नहीं बचा, आज तो ऐसा काम कर दिया इन कसाईयों ने। कबीर साहब बोले भाई क्या कर दिया कि भगवान वहां तो जहां तक देखा है ना महापुरुष या संत जन, कोई नागेर कोई शरडीर कोई फिरडीर कोई वैष्णो ना जाना कितने काये पड़े हैं, और भगवान सबके पास पत्र है, झूठे पत्र लिख दिए किसी ने, और साथ में ये भी लिखा तीन दिन का भंडारा है और सभी संतों को संत संतों को एक एक सरफी और एक एक दोहर दोहर एक बहुत इम्पोर्टेंट बहुत बहुत ही बेस्ट कंबल टाइप कंबल से भी अच्छी बहुत कीमती सर्दियों का कपड़ा होता है दोहर बोला करते हैं कि वो देगा, और ये भी लिख रखा है। कबीर साहब कहने लगे रविदास अपना बंद कर ले झोपड़ी का अंदर से साकल और बैठ जा, और आज आज का दिन काट ले, शाम ने अपन निकल चलेंगे, रात ने अपने बच्चा ने सब न लेकर, क्यों वो बोले बच्चे थे परमात्मा के, अपनी ना को पत्नी थी, केवल दो बच्चे थे जो मुर्दे जीवित किए थे किसी शेख तकी की जद पर, एक कमाली नाम की लड़की कमाल नाम का पुत्र जो 12-13 साल की आयु के जीवित किए थे, और दो उनके माता पिता, मुंह बोले माता पिता नहीं थे दुनिया की दृष्टि में, एक लीला करने आए थे। तो भी रात को निकल चलेंगे रविदास, दिन दिन काट ले, आवाना कुआ दरवाजा खटखटा बोलिए मत। अब उधर से परमात्मा बैठ गया अपना जैसे भजन कर रहे हो, और वहां पहुंचे अपने सतलोक में, परमात्मा करोड़ असंख्य रूप बना सकता है एक सेकंड में, और एक सेकंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सतलोक जाकर वापस आ सकता हूं। गरीबदास जी कहते हैं एक पलक में साहेब मेरा फिरता 14 भवना वो ओए, कहते मेरा परमात्मा एक पलक में 14 लोक में घूमकर सबकी खबर लेकर एक सेकंड में आ जाता है। एक पलक में साहेब मेरा भगवान मेरा वो फिरता 14 भवना भवन माने 14 लोकों में, इस पृथ्वी पर 14 लोक भी है पृथ्वी इस ब्रह्मांड में। तो वहां पहुंचे सतलोक में, संदेश भेज दिया टेलीफोन कर दिया कि तैयार करो 900,000 बैल, वहां की आत्मा सतलोक वाली प्यारी आत्मा 900,000 बैल बने जिनके सिर पर सींग नहीं, और 900,000 बैलों के ऊपर बना बना सामान सतलोक का अमृत हार वो जलेबी लाडू पकौड़ी कचौड़ी दही बड़े सारे बनवा के, और खीर के माट बड़े और चावल बासमती तो भी बढ़िया, और वहां आके अब 900,000 तो बैल और साथ में बंजारे बनकर और एक स्वयं अपना दूसरा रूप केशव नाम का बंजारा बनकर, केशव नाम रखे वही परमात्मा अलग से एक बंजारे का रूप बना के और काशी के चौपड़ के बाजार में आकर तंबू तान दिए टेंट लगा दिए सफेद सफेद रंग के कत्ती बिल्कुल स्नो व्हाइट, और ना मैं ले हूं क्योंकि परमात्मा की लीला, और नीचे सफेद कपड़े बिछा कर उन पर रख दिए बर्तन, और जैसे चावलों की पाल डाल दी उनके अंदर, चारों तरफ से बंद टेंट परमात्मा का आहार बिना पकाया पक रहा ना चीपी रांधनी, और चौपड़ के बाजार पर लगी है चांदनी परमात्मा के वो टेंट लगे। अब दुनिया तो लगी अपना भोजन पान खावा भोजन जय जयकार है, और केशव रूप में परमात्मा बैठे और जो भी भोजन पावे उनको एक असरफी एक दोहर विदा करे जैसा लिखा था पर्चे में डेली हर भोजन के बाद, अरे कदा बेईमान दो दो भी खावे कोई बात ना उनको भी देवे खा लो तुम। तो क्या हुआ उधर से एक चिट्ठी डाल दी किसको, सिकंदर लोधी को भी डाल दी कि आपके गुरुदेव यानी कबीर साहब की तरफ से कि एक भंडारा कर रहे हैं आप जरूर आइएगा। शेख तकी ने वह पर्ची तो उसका चाल थी, कहने लगे आपके गुरुदेव वहां भंडारा कर रहे हैं चलोगे? तो सिकंदर लोधी बोला क्यों नहीं चलेंगे पक्का चलेंगे, और दो चार दिन पहले प्रस्थान कर दिया और निश्चित उसी दिन सुबह सुबह पहुंच गए जिस दिन भंडारा शुरू होना था। अब शेख तकी ने तो सोचा था कि ढूंढा नहीं पावा कबीर इसको, बना रहा था उसको भगवान, अल्लाह को कह था ये तो परम शक्ति कहा करते थे। शेख तकी साथ आना ही था क्योंकि उसका धार्मिक गुरु सिकंदर लोदी का, दिल्ली के बादशाह का। अब वहां जाकर देखा कि तो बिल्कुल उस शेख तकी की सोच के विपरीत कहानी होगी है। क्या कहानी होगी कि दुनिया जय जयकार करे और खावे मोहन भोजन वो नाना व्यंजन और जय जयकार जय हो कबीर की, भाई से भंडारे हमने नहीं देखे आज तक। ओहो क्या बात की, जैसा लिखा था वही मोर वीर असर फीस प्रदान की जा रही है। भाई धन्य है इसके मात पिता ने, धन्य है ऐसे ऐसा भंडारा करने वाले को। कौन है वो कबीर, उसके दर्शन हो जाए तो भाई हम गदगद हो जाए, इसे महान आत्मा के दर्शन होने चाहिए। अब सिकंदर लोदी चर्चा सुन रहा, देखा वहां पर भंडारा जय जयकार हो रही। अब शेख तकी की तो मासी मर गई, उसका तो घड़ों पानी पड़ गया, अकिया तो बात बिगड़ गई, तो फिर जय जयकार हो रही इसकी। एक तरफ बैठ गया मुंह लटका के, माथे पर हाथ रखकर बैठ गया, गया के बनी। तो सिकंदर लोदी ने पूछा भाई यहाँ क्या कौन है ये भंडारा देने वाला, कि कबीर साहब है। कहने लगे एक आदमी बैठा है इस टेंट में और वो कर रहा है। क्या नाम है उसका, केसो नाम बताता है। अब सिकंदर लोदी केसो दूसरे रूप में बैठे, प्रभु के पास गए, केसो रूप में बैठे थे। तो केशव से पूछा कि आप कौन हो, कबीर आपका क्या लगता, कबीर साहब आपका क्या नाता है आपका उनसे। केशव रूप में परमेश्वर आप ही कहते हैं कि मैं उसका पगड़ी बदल यार हूं, दोस्त हूं। और उस मेरी एक मेरे पास एक पत्र गया था और शेख तकी ने कान ला कर सुना उसके टेंट का बार ले पास है अके बतलाएंगे कि मेरे पास एक पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा है दोस्त, कुछ सामान लेते आइएगा। रोतरे की सुनने वाले भी नहीं हो गए, छोटा सा भंडारा, तीन दिन का भंडारा जिसमें 18 लाख रोजी में एक एक टाइम में 18 लाख भोजन पावे, हर मोर असर फी साथ दे रहा है, नाना प्रकार के लाडू जलेबी रसगुल्ले ये आइटम हमारे याद भी कोई ना हो, इतने बना रखे परमात्मा ने। तो कहता है शेख तकीक तो बैठ गए एक लपेट पकड़ के, कहते रहेगी तो भाई कसूता काम इसने दे छोटा सा कहते हैं। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान क्यों नहीं आए आप, भगवान क्यों नहीं आए। तो केशव कहने लगा मेरा नाम केशव है और मैं उसका पगड़ी बदल यार हूं, बंजारा हूं मैं, और जब उसका दास यहां बैठा है तो उनको आने की क्या आवश्यकता है, उनकी मौज है जब आओगे आ जाएंगे, उसको कोई कह थोड़े सकते हैं आ जाओ, उनकी मौज और रजा है जब आओगे मालिक आ जाएंगे, हम तो उनके दास बैठे हैं यहां पर। अब सिकंदर लोधी की आंखों में पानी भर गया कि परमात्मा ऐसा भंडारा राजा नहीं दे सकता, जैसे कितनी बात बनावे। अरे परमात्मा जाने थे उस परिचित थे उसकी महिमा थे। फिर वहां पहुंच के झोंपड़ी पर हाथी पर बैठे हुए और सैकड़ों की संख्या में बॉडीगार्ड अंगरक्षक साथ सिकंदर लोदी के, कबीर साहब की झोंपड़ी के सामने जाके हाथी से नीचे उतरे अंबारी तय और कवाड़ खटखटाए स्वयं कबीर साहब के, वो दरवाजा खटखटाया कुटिया का। रविदास बोला जी लगता है यहां भी आ गए हैं वो तो भंडारा मांगने वाले भंडारे वाले। कबीर साहब बोले बोलिए मत, चले जाएंगे भाई, अपना बोलना नहीं अपने, वो तो अंतर्यामी थे पर लीला करें ना जाने के कर दे। तो जब दरवाजा खटखटा तो नहीं बोले, चुप रहे। जब दूसरी बार फिर कहा कि दरवाजा खोलना परवरदिगार, सिकंदर लोदी आपके दर्शन करना चाहता आपका दास। कबीर साहब कहने लगे राजन आज दरवाजा नहीं खुला हमारा, हम तो दुखी हो लिए इस बनारस में, और आज रात के समय मैं अपने सब माता पिता और बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा राजन, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, इन्होंने बहुत परेशान कर लिया मुझे, कभी मार रहे हैं, कभी काट रहे हैं, कभी कुएं में डाल रहे हैं, कभी तेल की कढ़ाई में डाल रहे हैं, और अब इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि मुझे तो बाहर निकाल मुख दिखाने जोगा नहीं छोड़ा मुझे, ऐसी लीला करे जैसे अनविज्ञ हो कोई ज्ञान नहीं। तो इसलिए रामानंद जी कहते तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, तू ही दास बनकर बैठ जाता है और तू ही भगवान का रोल कर रहा है सतलोक में, और तू ही वहां केशव बनकर बैठा है परमात्मा, तू ही साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस और गरीब दास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश। सिकंदर लोदी कहता परवरदिगार आप किसी और को बहका सकते हो, ये दास आपको समझ चुका है, आप किसे परिचित हो चुका है, हे परमेश्वर एक बार देखो तो वहां चल के कैसे रंग लगा रखे आपने मालिक, जय जयकार हो रही है आपकी, किसा कितना भंडारा हो रहा है आपके दर्शन के लिए, दुनिया तड़फ रही है। आखिर में ये कहता कि अपने दास को दर्शन दर्शन कर दो एक बार मालिक, दर्शन दे दो मुझे, मैं तो केवल आपके दर्शनार्थ दिल्ली से चल कर आया हूं कि इस बार में दर्शन भी कर लूंगा अपने अल्लाह खुदा के। तो सिकंद तो परमात्मा ने कहा कि खोल दे रविदास दरवाजा, खोल दरवाजा, खोल दिया। समेत मुकुट के चरणों में गिर कर वो प्यारी आत्मा सिकंदर लोधी अपने परमेश्वर के चरणों में और आंखों में पानी भर के कहते हैं, परवरदिगार आपकी महिमा ना पे जानो मालिक, आम जीव के बस का नहीं है ये इतनी लीला, इतना संकट को सहन कर लेना। और एक बार चलो दाता, हर इंसान के मुख से ये निकल रहा कौन है वो कबीर, एक बार दर्शन, ऐसे महापुरुष के दर्शन होने चाहिए, भोजन के साथ साथ इसे महापुरुष के दर्शन हो जाए तो और ज्यादा आत्मा तरफ हो है। आपके दर्शनाभिलाषी सब उम्र भीड़ इंतजार कर रही है, एक बार चलो मेरे दाता, मेरी प्रार्थना तय। तब कहते हैं कबीर साहब खड़े हुए और झोंपड़ी से बाहर आए, जो ही परमात्मा झोंपड़ी से बाहर आए, गरीबदास लिखते हैं कि बरसे फूल आकाश तय, ऊपर तय उस परमात्मा के ऊपर सतलोक तय, वह सुगंधित फूलों की वर्षा होने लगी, न कति पत्ते पत्ते से और न छा गया पूरा वहां पर सारा आंगन सुगंधित फूलों से और उस पत्तों से भर गया। अब रविदास जी चवर कर रहे थे पीछे पीछे अपने गुरुदेव पे, ऐसे चवर सफेद चवर आदर से करते हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ गुरु ग्रंथ इस ग्रंथ सदग्रंथ पर भी करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पर भी आपने कभी देखा वैसे करते हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि परवरदिगार अंबारी में बैठो, हाथी की में, हाथी की अंबारी में बैठा लिए रविदास जी, कबीर परमेश्वर और साथ में सिकंदर लोधी। रविदास जी से कहा सिकंदर लोधी ने कि मुझे भी ये चवर मुझे दे दो, आप तो सदगुरु की सेवा रोज ही करते हो, मुझे अवसर दे दो आज दास को यह सेवा करने का। रविदास जी से लेकर चवर और चारों तरफ की हाथी के ऊपर रूम बन जाता था, हाथी के ऊपर एक बहुत बढ़िया 8-9-10 फुट की एक ऐसा बढ़िया बन जाता था और उसमें हवादार चारों तरफ की दरवाजे भी, उनको खोला भी जा सके ऊपर साइड में करके और वो बंद करना चाहो बंद भी हो सकता है, ऐसे उसको मैन्युफैक्चर किया था कमर रूम टाइप। तो सिकंदर दो दिन वो चारों दरवाजे खुलवा दिए, केवल वह चारों तरफ एक फ्रेम फ्रेम खड़ा, अब चारों तरफ ने देखे मेरे भगवान ने। और सिकंदर लोधी चवर करे ये दिखाने के लिए कि आम व्यक्ति नहीं है जिस पर राजा चवर करे। अब वहां चारों जब पहुंचे सारे बाजार में कह भंडार में पहुंचे और जो देखे वो कह भाई कौन है वो कबीर, नीचे वाले बतावे काशी के लोग के वो बैठा कबीर, ये जिस पर ये कौन है जो चवर करा के दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी है ये, अरे इस पे इस जुलाहे पर एक गरीब आदमी पर राजा ऐसा समर कर रहा है, वहां के लोग तो ऐसे कहें। और जो आम व्यक्ति जो बाहर से आए थे वो कहे ओहो ये तो चवर के इसके ऊपर तना विरा के कर दे तो भी थोड़ा, आम व्यक्ति जो बाहर के आए हुए जो अच्छी आत्मा होती है और पेट भर होते वो तो अपना ठीक है रोट पाड़ना है उनका अलग, वो तो बात ही अलग होती है, वही खाया करें और वही गाली भी देते हैं उनको, तो हमेशा ही ऐसी व्यक्ति के सदा ही रहे। और जो पुण्य आत्मा थी वह नो कहती वही सा भंडारा और नो हाथ जोड़े प्रार्थना करे वह धन है कबीर की, जय हो कबीर की, जय हो कबीर साहब की, भाई ऐसे भोजन हमने नहीं खाए। अब क्या बताते हैं कि सारे बाजार के जहां 18 लोग आदमी भोजन पाओ कितनी लंबी लाइन लगी होगी, 4-4, 5-5, 10-10, 15-20-20, 100-100 लंबी, उन सारे में का घूमकर सारे बाजार में का घुमा के सिकंदर लोधी जान बुझ के लाए घुमा के वापस आ गए जहां पर केशव रूप में परमेश्वर बैठे थे दूसरा डबल रोल में टेंट के अंदर। वहां से सिकंदर उसने जो केशव वाले रूप में बैठे थे वहां से एक अलकारा भेजा, एक सेवक भेजा उन्होंने कि जाओ भगवान को बुला लाओ कि आपका दोस्त याद करे कर रहा आपको। उसी समय केशव के टेंट में से एक सेवक गया और हाथी पर बैठे हुए प्रभु से प्रार्थना की कि आपको आपका दोस्त केशव याद कर रहा है आपके दर्शनाभिलाषी। सिकंदर लोधी और कबीर साहब नीचे उतरे, नीचे उतर कर हाथी से कहां पहुंचे, उस टेंट में जहां पर वो परमेश्वर डबल रोल में बैठे थे। कबीर साहब के आने से पहले कहते हैं एक सेकंड में एक आसन लग गया ऑटोमेटिक फटाफट, और उसके ऊपर बहुत सुंदर पाट पटम्बर यानी बहुत सुंदर हीरे पन्ने से जड़े हुए चारों तरफ के जालर लटकने लगी, और कहा यहां विराजमान हो प्रभु, अपना दूसरा रूप कबीर परमेश्वर को कह रहा। खड़ा होकर आदर किया उनका, कबीर साहब विराजमान हुए और दूसरा तख्त ऐसा ही सिकंद उस केसो रूप में बैठ गए, और उस टेंट के चारों तरफ के वो सीलिंग यानी वो पर्दे हटा दिए, चारों तरफ के कर्टेन उठवा दिए कि दुनिया देखे और सुने। अब वहां कहते हैं आठ पहर गोष्ठी हुई, आठ पहर पता कितने, 24 घंटे, 24 घंटे सत्संग चला। देख कितने दयालु मालिक, पर हम अंधे गणे कर दिए अज्ञानी संतों ने। कबीर साहब वो इस रूप में प्रसन्न करता है कबीर साहब तय, और कबीर साहब देते हैं इस उद्देश्य से, हो सके ये नादान आत्मा अब भी कोई समझ जा सुन कहीं सत्संगना। और भंडारे का केवल ये उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य ये था उस परमात्मा के, हो सके ये प्यारी आत्मा को भंडारा खाने आई हो, और ना जाने किसका ये सत ज्ञान की छींट लग जा, ना जाने किसके हृदय में ये बात समा जावे और समझ ले अपने भगवान को। क्योंकि संत जो बने हैं ये हैं तो जिज्ञासु, परमात्मा की तड़फ है इनको, लेकिन रास्ता ठीक ना मिलने से प्यारी आत्मा ठीक है, फिर जैसे माहौल में डल गए सुल्फे पीन लगे, खान खून की नीत बिगड़ गई तो वो सब लग गए, चेले इकट्ठे करने लग गए, आश्रम बनाने लग गए। रास्ता ठीक ना मिलने से कुछ भी कर सकती है, जीव तो है ये, और उधर से आत्मा परमात्मा की तड़फ है इसको, तो सुनने लगे। आठ पैर तक केशव प्रश्न करता, कबीर साहब उत्तर देते हैं। केशव कहता है